الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو اس کلاس کے اندر ہم سورۃ الانبیاء کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرفت القرآن کی جلد نمبر 6 سے، اور اس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھنی شروع کی ہوئی تھی. معارف و مسائل پڑھ رہے تھے، جن آیات کو بھی ہم نے تلاوت کیا، 83 اینڈ 84. تو اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو مصائب آئے تھے، ان کا جو قصہ آیا تھا، اس کا ذکر تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کمتر اور ناقص ہی سمجھا کرتے تھے کہ اللہ میں نے تو آپ کا شکر ادا نہیں کیا جیسا مجھے کرنا چاہیے تھا وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائشیں نازل فرمائی اور ان کی ان تمام نعمتوں کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے واپس لے لیا، اور یعنی کھیت کھلیان بھی ختم ہو گئے، اولادیں بھی ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ جو صحت تھی، جسم تھا، وہ بھی بہت بری بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا. صرف ایک بیوی جو ہے وہ ساتھ رہ گئیں، جو کہ ان کی بس خدمت کیا کرتی تھیں. لوگوں نے ان کو اٹھا کر کے کوڑے کچرے کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، اور اپنے ایمان سے اور اپنی نیکیوں سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے. جو کچھ کر سکتے تھے وہ ابھی بھی کرتے رہے، اللہ کی ناشکری نافرمانی نہیں کری. تو یہ ساری تفصیل پڑھ کر کے اب ہم اگلے موضوع کی طرف، جو کہ حضرت نے یہاں پہ عنوان لکھا ہے، اگلا عنوان یعنی اگلی ہیڈنگ، وہ کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 216 کے اوپر ہے، 216. تو اس کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس شدید بلا میں کہ سب مال و جائیداد اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرائیں، بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر 7 سال چند ماہ پڑے رہے، لیکن کبھی جزا و فضا یا شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آیا. ہائے واویلا، جس کو ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ، اور میں نے تو کون سا برا کیا تھا، یا یہ کہ اللہ کا کیا جاتا تھا کہ اگر میرے اوپر ایسا وقت نہ آتا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرتے تو کیا ہو جاتا. اس طرح کی کوئی بھی بات یا ایوب علیہ السلام نے نہیں کری. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر کوئی برس نما جزام برس یا لیپرسی نما کوئی بیماری ان کے اوپر آ گئی تھی. ٹھیک ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ نیک بی بی لیا زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا. یہ لیا زوجہ محترمہ جو ان کی تھی، ان کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ غالباً یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی یا ان کی پوتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ خدمت میں لگی رہتی تھی. تو انہوں نے ان سے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے. تو فرمایا کہ میں نے 70 سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں، کیا اس کے مقابلے میں 7 سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی نعمتیں بھی تو میں نے کھائی ہیں نا، تو اب اگر آزمائشیں آئی ہیں تو میں فوراً جو ہے وہ ان کو ٹالنے کی دعا کرنا شروع ہو جاؤں. تو اس وقت جو ہے نا، انہوں نے دعا نہیں کری اپنی بیوی کے یاد دلانے کے باوجود یا بیوی کے کہنے کے باوجود. حالانکہ دعا کرنا جو ہے وہ کوئی برا عمل نہیں ہے، کوئی ये कोई सबर के खिलाफ नहीं है, तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? ठीक है, इन्होंने दुआ क्यों नहीं करी? हालांकि दुआ के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि अद्दुआ मुखल इबादत, सही पढ़ रहा हूँ हदीस मुबारक, कि दुआ जो है ना वो इबादत का मगज है, इबादत की जान है, इबादत का कोर है, दुआ मांगना अल्लाह ताला से। ठीक है, दुआ है क्या? दुआ जो है वो बंदे का आजजी के साथ, बंदे का आजजी के साथ परवरदिगार से मांगना, ये दुआ है। ठीक है, यानी अपने आप को कमतर समझ के, अपने आप को बुरा समझ के, अपने आप को यानी रहम का मुस्तहिक समझ के इस तरीके से अल्लाह ताला से मांगना, इसको दुआ कहते हैं। बल्कि इसको ज्यादा और जनरलाइज कर लें, अगर ज्यादा अमूमी शक्ल दें, तो किसी बड़े से अपने आप को छोटा समझते हुए मांगना, ठीक है ना, ये दुआ कहलाता है। अब मांगना क्यों इस तरीके से इसकी तारीफ करी गई? क्योंकि किसी से दूसरे अंदाज में भी मांगा जा सकता है ना? जैसे कोई बड़ा अपने छोटे से मांगे, लाओ मुझे ला करके वो चीज दो, है ना, वो जो तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो, ये भी तो मांगना ही है ना, राइट, ये भी तो मांगना ही है ना। कराची शहर के अंदर लोग जो है वो मोबाइल मांगते हैं, ठीक है, हमारे कुछ है ना जो बड़ा एक स्टाइल होता है कराची का, मजाक करने का स्टाइल होता है, भाई वो मांग लेते हैं, जरा मोबाइल को जेब में रखो, मोबाइल को छुपा के रखो, वरना लोग आके मांग लेते हैं। क्या मतलब मांग लेते हैं? वो अपने तफरीही मोड के अंदर, तफरीही मिजाज में बता रहे होते हैं कि लोग आके ना आपसे मोबाइल स्नैच कर लेते हैं, असल में बंदूक दिखा करके, ठीक है ना, तो वो भी तो आके मांगते हैं ना, आप ही जरा दिखाइएगा अपना मोबाइल, लेकिन फिर मोबाइल लेने के बाद वापस नहीं करते, है ना, क्योंकि उनके पास बंदूक होती है, वो अगर आपने कुछ चूचना करी तो वो आपको गोली मार देंगे, ठीक है, मोबाइल वापस नहीं देंगे। कहने का मकसद ये है कि मजाक के अंदाज में आपको एक बात बता रहे हैं कि मांगना वो भी मांगना ही होता है, ठीक है ना, लेकिन वो दुआ नहीं होता। उसी तरह बादशाह सलामत अपने किसी खादिम से कोई चीज मांग रहे हैं तो वो दुआ नहीं होता। उसी तरीके से एक बंदा अगर अल्लाह ताला से डिमांड के तरीके से मांगेगा, है ना, मुझे दे दीजिए वरना वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, वरना मैं आपसे मांगना छोड़ दूंगा, वरना मैं किसी दूसरे दर पे चला जाऊंगा, है ना, मुझे दे दो वरना मैं फिर पट्टी हो जाऊंगा, ठीक है ना, ये भी एक मांगना ही होता है, लेकिन ये दुआ नहीं होता। तो दुआ के लिए, तो दुआ को दुआ बनाती क्या चीज है? आजिजी और इनकिसारी, है ना। और आजजी और इनकिसारी का मतलब क्या होता है? आजजी इनकिसारी का मतलब जो है वो आम बंदे के साथ तो चलो ऊपर ऊपर से आपने जो है ना वो उल्टा यानी धोखा दे दिया उसको आजिज बन के। जैसे एक फकीर जो होता है वो जिससे मांगने जाता है ना, प्रोफेशनल फकीर, जब कोई मांगने के लिए जाता है किसी अमीर के पास, तो वो जाहिरी आजजी इख्तियार करता है ना, फटे पुराने कपड़े पहनता है और जो है वो बड़ा अपने आप को, प्लीज दे दीजिए आपके पास इतना है और मेरा भला हो जाएगा और मैं बड़ा गरीब हूँ और मैं बड़ा ये हूँ और मैं बड़ा वो हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है असल में, है ना। वरना फकीरों के बारे में सुना होगा कि इनके पास तो बड़े बड़े बैंक बैलेंसेस होते हैं, ठीक है ना, और इनके पास बहुत कुछ, इनके दिल के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं होती, ये ऊपर ऊपर से आजिजी दिखा रहे होते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं। ये जाहिरी आजिजी जो है ये बंदों के साथ तो चल जाती है, क्योंकि बंदों को तो पता नहीं आपके दिल में क्या है ना, आपकी असल कैफियत क्या है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ तो ये मामला नहीं है ना। अल्लाह ताला को तो मांगने वाले के दिल की कैफियत का पता है, राइट, उसकी नीयत का पता है, उसकी सोच का पता है, उसकी फिक्र का पता है अल्लाह ताला को, दुआ मांगने वाले की, है ना। तो अब ये अगर जाहिरी आजजी अगर कर भी रहा है, वैसे तो करना भी मुमकिन नहीं होता अल्लाह ताला के सामने, जाहिरी आजजी भी करना मुमकिन नहीं होता जिसके दिल के अंदर आजजी ना, लेकिन अगर ऊपर से कर भी रहा है, अंदर से जो है ना ये अपने आप को कसूरवार समझता ही नहीं है, अंदर से ये अपने आप को गुनाहगार समझता ही नहीं है, अंदर से ये अपने आप को यानी इसको कहते हैं ना भीख, है ना, अल्लाह ताला की रहमत की भीख का मुस्तहिक नहीं समझता, बल्कि ये अपना हक समझ के अल्लाह से मांगता है, ये तो मेरा हक था कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए थी, ये मिलनी चाहिए, ये तो मेरा हक है, आई डिजर्व दिस, राइट। तो इसके दिल के अंदर आजिजी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला को जो है ना ये यानी अपनी बेसिकली बड़ाई दिखा रहा है ना, क्योंकि अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दे सकता। अपने दिल में इसने ये मामला रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह को अपनी बड़ाई दिखा रहा है, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाथ हालात को देखता है। तो दिल में ये मामला इसने रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये अल्लाह को दिखा रहा है, अपने मसल्स दिखा रहा है, अपनी कुव्वत दिखा रहा है, अपनी बड़ाई दिखा रहा है, अपना जो है वो कुछ हक दिखा रहा है अल्लाह ताला को। ये दुआ नहीं होता, ठीक है? तो दुआ जो है ना, ये तो आजजी इनकिसारी, दिली आजजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला को मांगना, अल्लाह ताला से मांगना है, ठीक है? तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो मुखल इबादा है, बल्कि एक और मुकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुआओ हुवल इबादा, कि दुआ यही तो इबादत है, ठीक है? यानी इबादत भी जो है ना, वो दरअसल ऐसे ही बंदे को करनी चाहिए कि अपने आप को यानी बंदा समझ करके अपने आप को जो है ना वो ऐसा समझना कि जी मेरा काम तो झुकना ही है, मेरा काम तो अपने आप को सुपुर्द कर देना है, और अल्लाह ताला जो है ना वो इस काबिल है, इस लायक है कि उनके सामने जो है ना मैं अपने आप को जाहिरी और बातनी दोनों तरीके से झुका दूं, ठीक है ना? तो यही तो इबादत है। और इबादत के अंदर तो चलो इसके साथ साथ कुछ जाहिरी आमाल भी होते हैं ना, कुछ जाहिरी अफाल भी होते हैं, कुछ जाहिरी शक्ल होती है इबादत की। जैसे नमाज एक इबादत है, तो नमाज के लिए जो है वजू करना होता है, फिर उसके बाद खड़े होना होता है, हाथ ऊपर उठाने होते हैं, बांधने होते हैं, रुकू, सजदा, कादा, सलाम, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं नमाज के अंदर, ठीक है? लेकिन दिल की कैफियत जो है ना वो आजजी इनकिसारी वाली। लेकिन दुआ क्या चीज है कि दुआ के अंदर तो कोई जाहिरी अफाल भी नहीं है, जाहिरी अफाल भी नहीं है, ये तो दिल की कैफियत ही है। जुबान से मांगना कोई जरूरी नहीं है, जुबान ना हिलाओ, तालू से चिपका लो जुबान को, अगर ना भी हिलाओ दिली दिल के अंदर अल्लाह ताला से मांगो तो वो भी दुआ ही कहलाएगी, ठीक है? तो इबादत की भी जो असल हकीकत है वो दुआ है, गो के इबादत के अंदर कुछ जाहिरी अफाल उसके अलावा भी होते हैं, जबकि दुआ उसके अंदर तो जाहिरी अफाल भी कोई नहीं होते, अंदर ही अंदर की अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक है, ठीक है? तो अब ऐसी चीज जो है जो कि मुखल इबादा है, जो कि हुवल इबादा है, तो उसमें कौन सी बुराई भाई? क्यों अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं मांगते अल्लाह ताला से? तो आगे फरमाते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि पैगंबराना अज़्म व ज़ब्त और सब्र व सबात का ये आलम था कि दुआ करने की भी हिम्मत ना करते थे कि कहीं सब्र के खिलाफ ना हो जाए। हालांकि अल्लाह ताला से दुआ करना और अपनी एहतियाज व तकलीफ पेश करना ये बेसब्री में दाखिल नहीं है, ठीक है? यानी क्योंकि पैगंबर थे, नबी थे, और नबी जो होता है वो तमाम इंसानों के मुकाबले में सबसे ज्यादा ऊंचे मुकाम के ऊपर होता है, ठीक है? अल्लाह ताला से जो क्लोजेस्ट होता है एक माहौल मुआशरे के अंदर इंसान, वो नबी होता है, बाकी सब उसके कम दर्जे के लोग होते हैं, ठीक है? तो अब उसका अज़्म और उसका जो जब्त, यानी अपने आप को बांध के रखना, अपने आप को रोक के रखना, ठीक है, ये जो है वो सबसे ज्यादा होता है, तो उसी को पैगंबराना अज़्म व ज़ब्त कहते हैं। और सब्र व सबात यानी साबित कदमी के साथ जो है वो नेकी के रास्ते के ऊपर जमे रहना, उसको सब्र व सबात कहा, ठीक है? तो ये दुआ की हिम्मत ना करते थे कि कहीं सब्र के खिलाफ ना हो जाए, हालांकि अल्लाह ताला से दुआ करना और अपनी एहतियात यानी अपनी मुहताजी को, अपनी किसी जरूरत को और अपनी तकलीफ को अल्लाह ताला के सामने पेश करना ये बेसब्री में दाखिल नहीं है। अब ये जो जुमला है ना, ये बड़ा अजीब सा जुमला है, ठीक है? कि मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह तो ये बात लिख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर कि हालांकि सब्र व सबात का ये यानी हालांकि दुआ करना और अपनी एहतियात पेश करना बेसब्री में दाखिल नहीं है, है ना? 20वीं सदी के अंदर एक उम्मती, 20वीं सदी के उम्मती है ना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना? उम्मती को तो ये बात पता है कि ये जो दुआ करना है और एहतियात जो तकलीफ पेश करना जो है ना, ये बेसब्री के खिलाफ नहीं है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनको ये बात नहीं पता थी, भाई, उनको ये बात नहीं बताती जो कि नबी भी थे और नबी भी उस जमाने के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुर्ब के जमाने के, खलीलुल्लाह के कुर्ब के जमाने के नबी थे भाई, उनको ये बात नहीं बताती, इनको पता है ये वाली बात। ठीक है, अगर उनको पता थी तो उन्होंने इस पे अमल क्यों नहीं किया? तो ये क्या चीज हुई? इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे कि नहीं, अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और उनको ये बात पता थी। ये कोई 20वीं सदी में ये बात डिस्कवर नहीं हुई है दुआ के बारे में, ये हकीकत दुआ की 20वीं सदी में डिस्कवर नहीं हुई है। हत्ता के ये हकीकत दुआ के बारे में कि अल्लाह के सामने अपनी तकलीफ को, एहतियाज को पेश करना, ये सब्र के खिलाफ नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के साथ भी डिस्कवर नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने पहली दफा ये बात लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करी कि दुआ मांगना सब्र के खिलाफ नहीं। नहीं, ये जो ये एक ऐसी हकीकत है जो कि हमेशा से नबियों को पता है ये बात कि दुआ मांगना सब्र के खिलाफ नहीं, सबको पता है ये वाली बात, अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी ये बात पता थी। फिर उन्होंने क्यों किया ऐसा, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि दुआ नहीं मांगी? तो उसकी वजह जो है वो ये है कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं अंग्रेजी, अगर आपको इंग्लू के जरिए से समझाएं, अंग्रेजी प्लस उर्दू टाइप की जो हमारी लैंग्वेज होती है, हमारी जो बोलचाल है आम अवामी आमिया जुबान जिसको कहते हैं, तो उसमें अगर बात समझाए ना तो उसको हम कह सकते हैं कि गोइंग बाय द बुक उसूल और जाबता, उसूल और जाबते की बात जो होती है ना, जो किताब में लिखी हुई होती है ना, ठीक है ना, उसूल और जाबते की बात, ठीक है ना। तो उसूल और जाबते की बात जो है ना वो ये है कि अल्लाह के सामने अपनी एहतियात और तकलीफ पेश करना बेसब्री में दाखिल नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है? उसूल और जाबते की बात के लिए हमारी दीन के अंदर एक बड़ा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल होता है, वो क्या? उसको कहते हैं, नहीं आ रहा, कवान, कवा काफ वाद अलिफ और फिर आखिर में हमजा, कवान है ना। काजी साहब, काजी साहब तो सबको पता है, नाम भी होता है लोगों का काजी, और काजी किसको कहते हैं जो कि बुक के मुताबिक फैसला करता है ना। फिका की किताब है, शरीयत की किताब है जिसके अंदर उसूल और जवाबत लिखे हुए हैं, ठीक है ना, हलाल हराम और बाकी उसूल वगैरह लिखे हुए हैं। तो उनको कहते हैं कजा के उसूल, और काजी का काम ये होता है कि कजा के जो उसूल है ना, उसूल और जवाबित वगैरह जो है ना, उनके मुताबिक जो है वो लोगों को बताए कि अभी ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये उसूल है, ये उसूल के खिलाफ है ये। और अगर कोई मामला आपके सामने आ जाए, लोगों के दरमियान का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो आप जो है वो काजी साहब जो है ना वो कजा के उसूलों के मुताबिक फैसला बताते हैं कि भाई इसने ज्यादती करी थी, उसने जो है वो ज्यादती नहीं करी थी, इसका कसूर है, उसका कसूर नहीं है। इसको कहते हैं कवान, उसूल और जवाबित के मुताबिक, ठीक है ना। और दूसरी चीज एक होती है, दूसरी चीज क्या होती है? उसको कहते हैं दियानतन, दियानतन। ये दियानत जो उर्दू में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, अमानत और दियानत, राइट, वही वही वाला दियानत है ये, ठीक है। तो दियानतन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मामला जो कि किसी एक खास बंदे का परवरदिगार के साथ है, एक बंदे का परवरदिगार के साथ जो बिल्कुल डायरेक्ट एक मामला होता है ना, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे आपका ऊपर ना, आपकी दिली कैफियात है और वो आप अल्लाह ताला के साथ शेयर कर रहे हैं, अल्लाह ताला को पता है कि आपके दिल के अंदर क्या है, आप अल्लाह ताला के साथ एक डायरेक्ट मामले के अंदर है, ठीक है ना। ये जो डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ नियत का जिसको कहता है ना मामला, नियत का मामला, ये कहलाता है दियानतन, ये दियानतन कहलाता है, जो कि बंदे और परवरदिगार के दरमियान होता है। इसके अंदर जो है ना वो कजान वाला मामला इतना अप्लाई नहीं होता, होता भी है लेकिन इतना अप्लाई नहीं भी होता, ठीक है। तो ये जो दयानतन मामला होता है ना, इसी को एक और तरीके से भी हमारे मशायख डिस्क्राइब करते हैं कि हाल की बात है, हाल, हाल और कैफियात, ठीक है। حال اور کیفیات والی بات، یہ جو حال اور کیفیات والی بات ہو جس کو کہ دیانتن بھی کہا جاتا ہے، یہ جو ہوتی ہے نا یہ قضاءً یعنی اصول و ضابطے کے مطابق بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اصول اور ضوابط کے مطابق نہیں ہوتی، اصول اور ضوابط کے مطابق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصول اور ضوابط کے مطابق ہوتی ہے لیکن یہ سمجھائی نہیں جا سکتی، یہ کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی، یہ کسی کو بتائی نہیں جا سکتی، اگلے بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، ٹھیک ہے نا. تو دیانتاً معاملہ ایک الگ ہوتا ہے، قضاءً معاملہ ایک الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. قضاءً کا مطلب اصول و ضوابط جو ہیں، جو رولز ریگولیشن لاز، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق جو ہے وہ یعنی اس کو کہتے ہیں ظاہر کا معاملہ، ظاہر میں جیسے معاملہ ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا، حلال کا، جائز کا، ناجائز کا، جرم کا، سزا کا، ظاہری معاملات کے اوپر اس کے اوپر حکم لگا دیا جائے گا ظاہری اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتا ہے بندے کے اندر کی کیفیات، اندر کا معاملہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے اوپر مبنی ہے، اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ دیانتاً کہلائے گا. ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ اس کو سمجھائی نہ سکیں، آپ اس کو بتائی نہ سکیں، ہے نا، قاضی صاحب کو، قاضی صاحب کے سامنے آپ اپنے معاملے کو سمجھائی نہ سکیں، لیکن آپ کا اپنے پروردگار کے ساتھ ایک ڈائریکٹ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہمارے دین کے اندر جو ہے نا، یہ انتہائی اہم چیزیں، انتہائی اہم باتیں ہیں، ہے نا. اگرچہ کہ کوئی آپ کو کہے کہ نہیں یہ تو بڑی بڑی جو ہے نا بڑی دقیق قسم کی اور بڑی جو ہے نا مشکل قسم کی باتیں آپ نے کرتی ہیں، کسی کے سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی پتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سمجھانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بات پتا ہے الحمدللہ کہ اس کو سمجھے بغیر جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا وہ بڑی گمراہی سے بچ نہیں سکے گا. جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے نا اس کو، بڑی گمراہی جو ہے نا وہ اس سے بچنا اس کے لیے بڑا مشکل کام، ٹھیک ہے. تو ہمیں کم از کم اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہماری دین کے اندر قضاءً بھی ایک چیز موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قضاءً معاملے کا فیصلہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے دیانتاً معاملہ، یہ بھی دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھ لیتا ہے نا، بہت زیادہ جو ہے وہ مفتی بن جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کو ظاہری علم حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو دیانتاً والی بات سمجھ میں نہیں آتی اگر، تو پھر وہ شخص جو ہے نا وہ غلطی یہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر ہر چیز کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز کو، حالانکہ ہر چیز کو نہیں توڑا جا سکتا. جو دیانتاً معاملات ہیں ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر نہیں توڑا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایسا شخص جس کو کہ بس خالی ظاہری علم حاصل ہے اور دیانتاً والا علم اس کو بالکل بھی حاصل نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی اس کو یہ باتیں، پھر جو ہے نا وہ کبھی بہت بڑی بے ادبی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وی ہیو ٹو ہیو اے ویو آف بوتھ دا تھنگز، ٹھیک ہے. بہت زیادہ آپ کو دقیق باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ اس کا علم حاصل نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا پتا ہونا چاہیے کہ دین کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں. اسی نے سوال لکھا ہے غالباً یہاں پر ڈائریکٹ میسج میں کہ جیسے حضرت صاحب نسبت کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کسی کو سمجھا نہیں پاتے کہ یہ کیا، یہ مثال ٹھیک ہے؟ نہیں، نسبت کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، نہیں وہ پھر آپ کسی کو سمجھا نہیں پا رہے کہ نسبت کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھکا چھپا اور دیانت قسم کا معاملہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کا اتنا علم ہے نہیں کہ آپ جو ہے وہ بات کو خود پوری طریقے سے سمجھ کر کے اگلے بندے کو سمجھا سکیں، ٹھیک ہے. تو نہیں، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک. پھر تقدیر پر بحث شروع کر دے گا، نہیں تقدیر کا ڈسکشن بالکل الگ ڈسکشن ہے، یہاں پر قضاءً اور دیانت کی ڈسکشن ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دے کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی مثال، ایک بہترین مثال جو ہے نا وہ ہماری ہسٹری سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بہت یعنی مخصوص بندے گزرے ہیں ہسٹری کے اندر، ٹھیک ہے. ان میں سے نا ایک کا نام ہے منصور حلاج، मंसूर हल्लाज, ठीक है ना। ये जो थे ना, ये थे बहुत बड़े आशिक अल्लाह ताला के, बहुत बड़े आशिक अल्लाह ताला के, ठीक है। लेकिन इनके साथ जो है ना, वो एक हो गया था मामला, वो ये कि ये जो है ना, अपने आप को जो है ना, ये यानी इनकी तबीयत कुछ ऐसी जरा सेंसिटिव किस्म की तबीयत थी, ऐसी कुछ हर बंदे की अलग तबीयत होती है ना, ठीक है। कुछ लोग जरा जरा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग जरा ज्यादा रकीकुल कल्ब होते हैं, है ना। बात बात पे रोना आ जाता है, कुछ लोग होते हैं कुछ भी कर दो रोना नहीं आएगा, अल्लाह ताला ने तबीयतें मुख्तलिफ बनाई हैं। तो इनकी तबीयत ऐसी थी कि इनके ऊपर ना इश्क इलाही का ऐसा गलबा तारी हो गया था कि इनके ऊपर वो वाली हाल वाली कैफियत आ गई, है ना। एक हाल तारी हो गया इनके ऊपर, इन्होंने जो है ना अल्लाह की मोहब्बत के अंदर कुछ बातें बोलनी शुरू कर दी। वैसे तो बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के इन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अशार भी लिखे, राइट। अशार ऐसे हैं कि पढ़ने वाला जो है ना, वो यानी वो खुद अल्लाह की मोहब्बत को फील करता है इनके लिखे हुए अशार पढ़ करके, ठीक है ना। अशार के हद तक तो बात ठीक होती है ना, चल जाती है, क्योंकि अशार के अंदर जो है ना फिर वो वही बात है कि अजान की लिमिट्स कभी क्रॉस भी हो जाती है अशार के अंदर, ठीक है। जैसे हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहि सलाम के शायर थे, तो उन्होंने अपने अशार के अंदर लिखा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि अल्लाह तआला ने आपसे पूछ करके आपको बनाया है ना। अल्लाह ताला ने आपसे पूछ करके आपको बनाया। अभी अल्लाह ताला किसी से पूछ के किसी को बनाता है ना। अल्लाह ताला ने तो पूछ करके तो नहीं बनाया ना, ना ना किसी को बनाया, ना नबी अलैहिस्सलाम को पूछ के बनाया कि आपको कैसे बनाना चाहिए। लेकिन हसान बिन साबित अल्लाह ताला की जो शायरी है उसके अंदर ऐसे अल्फाज भी हैं, ठीक है। तो शायरी के अंदर जो है ना वो चलता है इस किस्म की बात है, ठीक है ना, कि जो कि आम समझ में नहीं आए कि ये जायज है, लेकिन शायरी के अंदर इस तरह की बातें होती हैं। तो मंसूर हल्लाज की शायरी बहुत जबरदस्त शायरी है, लेकिन उनके ऊपर ऐसा हाल तारी हुआ कि उन्होंने जो है ना वो अपने आप को कहना शुरू कर दिया, अनल हक, मैं खुदा हूं। अल हक, अल हक का जो लफ्ज है ना, ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो अनल हक का नारा लगाना शुरू कर दिया मंसूर हल्लाज ने। अब उसकी वजह क्या थी, वजह बहुत लंबी है, लेकिन सादी सादगी सादी सी वजह उसकी क्या है कि इनके ऊपर हाल तारी हुआ हुआ था अल्लाह की मोहब्बत, ठीक है ना। लेकिन जब उन्होंने ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी, तो अब ये बात जो थी ना, ये कजा के उसूलों के खिलाफ थी। कजा का उसूल क्या है कि कोई बंदा अपने आप को ऐसे बोलना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि ये शिर्क में मुबतला हो गया है, ये कुफर में मुबतला हो गया है, ये मुर्तद हो गया है। पहले मुसलमान था, अब इसने इस किस्म की बातें करी ना, अब ये मुसलमान नहीं रहा, अब तो ये मुर्तद हो गया, ठीक है ना। तो उस जमाने में जो काजी साहब थे ना, उन्होंने फिर इनके लिए, इनको पहले तो उनको समझाया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप इससे बाज आ जाए, लेकिन इनके ऊपर हाल ऐसा था कि ये उतर के नहीं दे रहा था, इन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया, ठीक है। तो काजी ने ना फिर इनकी इनके लिए सजाए मौत का फैसला कर, ठीक है ना। तो मंसूर हल्लाज को बाकायदा सजाए मौत हुई, ठीक है। लेकिन ये जो सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था, ये कजाअन सुनाया गया था, क्योंकि कजा में ऐसा ही है, इस्लामी शरीयत के अंदर उसूल दवाबत में ऐसा ही है कि अगर कोई शख्स ऐसे करना शुरू हो जाए और फिर उससे रुजू भी ना करे, तौबा भी ना करे, तो उसको कत्ल किया जाए, मुर्तद की सजा जो है वो कत्ल होती है, ठीक है। लेकिन इनका मामला दयानतन क्या था कि दयानतन दरअसल ये इनकार नहीं कर रहे थे, है ना, ये दीन के खिलाफ नहीं जा रहे थे। दयानतन इनका मामला ये था कि ये अल्लाह की मोहब्बत में डूब करके और गलबा हाल की वजह से इस तरह की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अगरचे कि काजी भी कोई जाहिल नहीं था, काजी को पता था इस बात का, लेकिन काजी मजबूर होता है कि उसको कजाअन फैसले करने होते हैं, क्योंकि उसको काजी बनाया गया, उसका काम ही है, ठीक है ना, उसको कजाअन फैसले करने होते हैं, ठीक है। वो बड़े अहले इल्म और बहुत अहले तकवा और बहुत, काजी साहब भी कोई कम नहीं थे, वो भी बहुत बड़े अल्लाह की मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उनको कजान फैसला करना था। और इनका क्या मामला था, इनकी अलग मजबूरी थी, ये दयानतन वाले बंदे थे, ये उस लाइन के बंदे थे, इश्क और जो है ना वो हाल और है ना इस तरह के। तो अब इनकी मजबूरी, ये अपने आप को रोक ही नहीं पाए इस हाल से, इस कैफियत से अपने आप को निकाल ही नहीं पाए, ठीक है, अब इनकी मजबूरी अलग, उनकी मजबूरी अलग, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है ना, वो आज के दौर के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो कि वैसे तो शरीयत सुन्नत के पाबंद होते हैं, लेकिन कभी उनके ऊपर गलबा हाल होता है या कुछ और ऐसी कैफियात होती हैं, ऐसी रीजन होती हैं कि वो अपने सारे मामलात को जो है ना फिर वो कजान नहीं कर पा रहे होते हैं, मुमकिन नहीं होता उनके लिए कजान करना, ठीक है। अब जो बहुत ज्यादा समझने वाले, बात इस बात को समझने वाले होते हैं, उनको तो पता होता है कि ये जो ये वाला काम कर रहे हैं, ये कजान तो गलत नजर आ रहा है लेकिन दयानतन ये गलत नहीं है, दयानतन ये बात गलत नहीं है। खजान तो गलत नजर आ रही है, दयानतन ये बात गलत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो उसको कोई ऐसा फतवा वगैरह नहीं लगाते उसके खिलाफ, उनके उन शख्सियात के खिलाफ फतवा नहीं लगाते कि हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं, ये गुमराह हो गए, इन्होंने जो है वो नाउज बिल्ला ऐसी बात करनी शुरू कर दी, नहीं लगाते, ठीक। लेकिन जो आम लोग होते हैं ना, थोड़ी किताबें पढ़ने वाले या थोड़ा सा दीन समझने वाले, उनको तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्या भाई, हमने तो किताब में ऐसा पढ़ा था और ये तो ऐसा नहीं कर रहे, है ना, हमने के तो किताब में ये पढ़ लिया था वो तो ऐसा नहीं कर रहे। तो ये जो छोटे होते हैं ना, छोटे शतुंगड़े कहते हैं इनको, शतुंगड़े, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक। तो ये जो है ना फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं, ओ ये गलत है, वो ऐसा किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक। बड़ों को पता होता है, अकाबिर को पता होता है कि ये बज़ाहिर गलत नजर आ रहा है लेकिन उसकी वजह कुछ और है, ठीक। तो हमें अपने आप को इसी तरीके से है ना फिर बड़ों के ताबे रखना चाहिए, ताबे ही रखना चाहिए। अगर बड़े किसी को नाम लेकर के बुरा नहीं कह रहे ना, तो हम भी नाम लेकर के उनको बुरा नहीं कहना शुरू कर दें, ठीक है। बहरहाल तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये बात पता थी, लेकिन ये अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाल का मामला था, ठीक है। उनको पता थी कि दुआ मांगना जो है वो सब्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी एक ज़ाती अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक वाली कैफियत थी, उन्होंने ये बात अपने लिए मुनासिब नहीं समझी कि मैं इस वक्त जो है ना अल्लाह ताला से इस कैफियत को उतारने का कहना शुरू कर दूं, ठीक है ना। जैसे कि वो पिछले क्लास में शेर भी पढ़ा था ना कि तेरा गम भी मुझको अजीज है कि वो तेरी दी हुई चीज है, तो हजरत इस अंदाज से इस बात को देख रहे थे, ठीक है। तो फरमाते हैं कि बिल आखिर कोई ऐसा सबब पेश आया जिसने उनको दुआ करने पर मजबूर कर दिया, और जैसे कि ऊपर लिखा गया है कि ये दुआ दुआ ही थी, कोई बेसब्री नहीं थी, ठीक है। कोई ऐसा सबब पेश आया, अब क्या सबब पेश आया ये नहीं पता, अगर पता होता तो मुफ्ती शफी यहाँ पर लिख देते। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी इसराइली रवायात जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। तो उनके उनमें तो बहुत सारी बातें मौजूद है, लेकिन वो हमारे उलमा ने उनमें से हर बात को जो है ना उस काबिल नहीं समझा कि उसको अपनी किताबों के अंदर भी नकल करें, ठीक है। तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि कोई ऐसा सबब पेश आया होगा, कोई ऐसी हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से, यानी ये नहीं कि कोई इनको ज्यादा तकलीफ होनी शुरू हो गई होगी कि उन्होंने कहा अच्छा अब जो है ना मैं दुआ करता हूँ, पहले गोया कम तकलीफ हो रही थी अब ज्यादा तकलीफ हो गई अब दुआ करना शुरू हो गए, जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ, हो सकता है ऐसा हो, क्या पता, या हो सकता है ऐसा हुआ हो कि इनके सामने कोई निशानी आ गई हो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से कोई बुरहान, बुरहान भी निशानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई ऐसी चीज खुल गई हो कि इनको अब पता चल गया हो कि हाँ अब मेरा रब चाहता है कि मैं अल्लाह से दुआ, मैं उससे दुआ करूं, अब जो है वो अल्लाह ताला की रजा इसी में है कि मैं दुआ मांगू, नबियों के सामने ऐसी निशानियां खुल जाती हैं कभी, ठीक है। नबियों तो क्या, वलियों के सामने भी ऐसी निशानियां खुल जाती हैं कि अब अल्लाह ताला की रजा इसी में है कि मैं दुआ मांगू, तो दुआ मांगी उसके बाद, ठीक है। ये बात तो कोई गुनाह करने वाला भी इस्तेमाल कर सकता है कि गलबे हाल की वजह से गुनाह किया था, हाँ वो गुनाह करने वाला ये इस्तेमाल कर सकता है कि गलबे हाल की वजह से गुनाह किया था, लेकिन अगर इस्लामी कजा का निजाम इन प्लेस होगा, काजी की अदालत होगी, तो उससे क्या किया जाएगा कि उसको जो है वो सजा भी दी जाएगी कि गलबे हाल की वजह से गुनाह किया था, बेटा ठीक है जा करके अल्लाह ताला को बता देना कि तुमने गलबे हाल की वजह से गुनाह किया था, तुम्हें जहन्नम में मत डालें, तुम्हें उसकी सजा मत दें आखिरत में, बेटा मेरे सामने तो तुम्हें सजा ही मिलेगी, है ना भाई। बेटा जी यहाँ पे गलबे हाल नहीं चलता, मंसूर हजलाज को नहीं छोड़ा था हमने, तुम्हें कहां से छोड़ देंगे, जाओ तुम्हारा हाथ उधर उधर काटते हैं तुम्हारा हाथ, ठीक है ना। फिर जो है ना उसका अगर वो सच्चा होगा, सच्चा होगा, गलबे हाल वाला होगा ना, तो कि हाँ ठीक है अल्लाह के सामने जा करके मैं अल्लाह को बता दूंगा, और झूठा होगा तो उधर ही रोना धोना, नहीं माफ करते हैं, अगर झूठ बोल रहा था मैं, और कोई गलबे हाल शाल नहीं हुआ था, बस गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है। तो इस गलबे हाल की तो ये जो आप कर रहे हैं गुनाह, तो भाई आप अल्लाह ताला के सामने जस्टिफाई कर दीजिएगा, मैंने गलबे हाल की वजह से किया था, ठीक है। बाकी ये कि ये तो एक 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 सॉर्ट ऑफ इस तरह का जवाब हो गया ना। दूसरा ये कि भाई जो अहले इल्म होते हैं ना, जो काजी को तो अहले में अहले इल्म होना जरूरी है, ठीक है ना, काजी हैं या दूसरे अहले इल्म हैं, तो वो कराइन की बुनियाद पर फैसला करते हैं ना किसी के बारे में, है ना। अब मंसूर हल्लाज के कराइन जो हैं वो अहले इल्म को पता थे कि ये आशिक सादिक हैं, राइट। तो आज तक जो अहले सुन्ना वल जमात के जो अकाबिर हैं वो मंसूर हल्लाज को जो है वो गलबे हाल का एक्सक्यूज देते हैं, राइट, क्योंकि उनको कराइन की वजह से पता था कि ये अल्लाह के आशिक हैं। और आज जो है वो कोई चोर आकर के बोले मैंने गलबे हाल की वजह से जो है वो चोरी करी थी, तो भाई उसके कराइन को देखा जाएगा ना कि हाँ भाई ये किस किस्म का इंसान है, भाई इसने कोई आशिक सादिक वाली बात करी भी है क्या, ऐसे ही जो है वो अपने आप को बचाने के लिए गलबे हाल के नारे लगाना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो कराइन के मुताबिक फिर पता चलता है ना मंसूर हल्लाज का खात्मा ईमान पे हुआ या नहीं हुआ, या नहीं, या हमें नहीं पता। यही तो आपको बता रहे थे देर से कि हमारे तमाम अकाबरीन इस पर मुत्तफिक हैं कि वो अल्लाह के आशिक सादिक मोमिन थे, ठीक है ना। खात्मा ईमान पे नहीं हुआ वाली तो डिस्कशन ही कोई नहीं करने की जरूरत है ना, आशिक सादिक मोमिन थे। अब आप खाम खाम में हम क्यों उनके खात्मा ईमान पे हुआ कि नहीं हुआ इसकी डिस्कशन क्यों शुरू करें, खात्मा ईमान पर। चले तो फरमाया कि कोई बेसब्री नहीं थी, हर ताला ने उनके कमाल सब्र पर अपने कलाम में मुहर सब फरमा दी है, ठीक है। तो उन्होंने बेसब्री वाली दुआ नहीं मांगी थी, क्योंकि अल्लाह ताला मतलब बाकी है कि दलील के तौर पर कुरान की आयत भी पेश की जा सकती है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं उनके बारे में, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, कि हमने उनको सबर करने वाला पाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा, कितना ही अच्छा बंदा था, इन्नहु अव्वाब, वो हमारी तरफ रुजू करने वाला था, ठीक है ना। पहले जो है वो उसने सबर के साथ रुजू किया, फिर बिलाखिर जब उसके सामने कोई बात खुल गई, बुरहान आ गई, तो फिर उसने दुआ के साथ हमसे रुजू किया। इस सबब के बयान में रिवायात बहुत मुख्तलिफ और तवील हैं, इसलिए उनको छोड़ा जाता है। क्या हुआ एग्जैक्टली डिटेल्स वगैरह होते हैं उस राइली रिवायत है, उनको हजरत यहाँ पर नकल नहीं किया। इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और उनको हुक्म हुआ कि जमीन पर एड़ लगाइए, यानी अपनी जो है वो पैर पैर जिस तरह वो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ लगाई थी, जमजम का कुआं निकल आया था ना, ठीक है, तो इनको भी एड़ लगाने कही। क्या कहते हैं एड़ को आसान जुबान में, एंकल। तो यहां से साफ पानी का चश्मा फूटेगा, उससे गुस्ल कीजिए और उसका पानी पीजिए, तो ये सारा रोग चला जाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इसके मुताबिक किया, तमाम बदन जो जख्मों से चूर था और बजुज हड्डियों के कुछ ना रहा था, इस चश्मे के पानी से गुस्ल करते ही सारा बदन, खाल और बाल यकायक अपनी असली हालत पर आ गया। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत का एक लिबास भेज दिया, वो जेब तन फरमाया और इस कूड़े कचरे से अलग होकर एक गोशे में बैठ गए, यानी पहले भी लिबास नहीं ना, नऊज़ बिल्लाह बेलिबास थे, लेकिन उसके बीमारी की कैफियत में लिबास भी गंदा गलीज है ना, अंदर से जो है वो यानी कीड़े लगे हुए थे उनके बदन के ऊपर, तो बस जो निकलता है तो उससे लिबास भी तो गंदा हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला ने फिर एक नया लिबास भी जन्नत से भेज दिया किसी फरिश्ते के हाथों। अय्यूब अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर ये ना गोशे में बैठ गए, तो ज़ौजा मुहतरमा हस्बे आदत उनकी खबरगीरी करने के लिए आई, तो उनको अपनी जगह पर ना पाकर रोने लगी। सही मानों में मोहब्बत करने वाली बीवी थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो एक गोशे में बैठे हुए थे उनको नहीं पहचाना कि हालत बदल चुकी थी, ठीक है। उन्हीं से पूछा कि ऐ खुदा के बंदे, क्या तुम्हें मालूम है कि वो बीमार मुब्तला जो यहाँ पड़ा रहता था कहाँ चला गया, क्या कुत्तों या भेड़ियों ने उसे खा लिया, यानी इस कैफियत में थे कि अगर कुत्ते भेड़िया के इनको भंबोड़ते तो ये अपने आप को बचा भी नहीं पाते, तो बीवी ने देखा कि वो तो गायब है बिल्कुल यहाँ पे, तो क्या वो खा करके मार करके घसीट के ले गए क्या बाकी हड्डियों वड्डियों को। और कुछ देर तक इस मामले में उनसे गुफ्तगू करती रही। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर औरतों के लिए फर्ज पर्दा हिजाब, ठीक है, तो इसलिए इस बात को भी करना जरूरी समझते हैं कि ये जो हिजाब है, हिजाब के अहकाम, पर्दे के अहकाम, ठीक है ना, ये जो है वो उस जमाने में थे ही नहीं। पर्दे के अहकाम कब आए हैं? नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत के 5 साल के बाद, 5वीं हिजरी के अंदर पर्दे के अहकाम आए, जिसमें कि क्या हुआ कि औरत और मर्द के दरमियान जो है वो पार्टीशन कर दी गई, सेपरेशन कर दी गई, इसको पर्दा कहते हैं। ठीक है ना, सेपरेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, सेग्रीगेशन भी कहते हैं उसको अंग्रेजी में। ठीक है, उससे पहले क्या था? उससे पहले सतर के अहकाम थे, पर्दे के अहकाम नहीं थे। सतर, सतर जिस्म का वो हिस्सा होता है कि जिसको छुपाना जो है वो फर्ज हमेशा से, ठीक है, बाल भी इसके अंदर दाखिल है, औरत के बाल सतर के अंदर दाखिल, ठीक है ना, लेकिन पर्दा ये बिल्कुल एक, यानी इसके पर्दा इसके ऊपर एक मजीद सेपरेशन, उसको पर्दा कहते हैं। ठीक है, पहले भी आप गालबन साहब सुन चुकी होंगी कि सर के ऊपर जो कपड़ा बांधा जाता है ये सतर पोशी के लिए बांधा जाता है, ये पर्दे के लिए नहीं बांधा जाता। इसी वजह से इस कपड़े को हिजाब कहना जो है ना, ये यानी ये कम इल्मी है या ये काफिरों की साजिश है, सीधी सी बात, ये काफिरों की साजिश है। ठीक है ना, कि सर के ऊपर बांधने वाले कपड़े को हिजाब का लफ्ज दिया गया, हिजाब का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया गया। अब ये और बात है कि हम इतने भोले और कम इल्म या कम समझने वाले, है ना, इल्म भी है फिर भी नहीं समझ रहे बात को, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा फिर? तो हम जो है, हमने जो है ना काफिरों की हाँ में हाँ मिला करके, उनकी रट में रट लगा करके, हमने उसको भी हिजाब कहना शुरू कर दिया, हालांकि ये हिजाब नहीं है, है ना। हिजाब तो भाई मतलब तो कुरान का एक लफ्ज और शरीयत का एक पूरा का पूरा एक फराइज में शामिल है औरत की। ठीक, तो उस वक्त हिजाब के अहकाम आए नहीं थे, तो इस वजह से गैर मर्दों के साथ जो है वो सेपरेशन नहीं थी। ठीक है ना, तो अब इन्होंने एक एक गैर मर्द को देखा, उससे पूछना शुरू कर दिया, बात करनी शुरू कर दी। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पर है कि ये तो बुढ़िया हो चुकी थी, है ना, और बूढ़ी होने के बाद जब औरत के ऊपर वैसे भी हिजाब के अहकाम थोड़े से रिलैक्स हो जाती है, ये नहीं कि बाल खोल करके बैठी हुई है, सतर खोल के बैठी हुई है किसी आदमी के सामने क्योंकि बूढ़ी हो गई है, नहीं, बूढ़ी के ऊपर से सतर के अहकाम खत्म नहीं होते, ठीक है, हिजाब के अहकाम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल ये बूढ़ी भी थी और उस वक्त पर्दे के अहकाम थे भी नहीं। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो बातचीत, हाँ भी क्या हुआ, बहुत यानी काफी देर तक ये डिस्कशन चलती रही कि वो क्या हुआ, उनकी गुफ्तगू चलती रही। ठीक है, ये सब सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि मैं ही अय्यूब, मगर जौजा मुहतरमा ने अब तक भी नहीं पहचाना। कहने लगे, अल्लाह के बंदे, क्या आप मेरे साथ तमस्खुर करते हैं, मजाक करते हैं? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि गौर करो, मैं ही अय्यूब, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और मेरा बदन असर नौ दुरुस्त फरमा दिया। ठीक है, यानी पहले गौर नहीं किया था इन्होंने, ये नहीं कि दीदे फाड़ फाड़ के जिसको देखना कहते हैं ना, पहले ऐसे नहीं देख रही थी, बस ऐसी कैजुअल तरीके से बात चल रही थी, ठीक है ना, बगैर सेपरेशन के, बगैर हिजाब के बात चल रही, हिजाब के अहकाम ही नहीं थे। लेकिन मियाँ बीवी जो होते हैं वो तो लिबास की मानिंद होते हैं ना, तो इस वजह से मियाँ बीवी को एक दूसरे की निशानियां भी पता होती हैं। जब इन्होंने कहा गौर से मेरी निशानी को देखो कि तुम्हें पहचान पहचान आ जाए कि मैं अय्यूब हूं, फिर इन्होंने गौर से देखा तब पहचान गई कि हाँ ये वाकई मेरे शौहर अय्यूब है। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया, मेरा बदन अस्तर नौ दुरुस्त फरमा दिया। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इसके बाद अल्लाह ताला ने उनका माल दौलत भी उनको वापस कर दिया और औलाद भी, और औलाद की तादाद के बराबर मजीद औलाद भी दे दी। इब्ने मसूद फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के और 7 लड़कियां थी, इस इब्तला के जमाने में सब मर गए थे। जब अल्लाह ने उनको आफियत दी तो उनको भी दोबारा जिंदा कर दिया और उनकी अहलिया से नई औलाद भी उतनी ही और पैदा हो गई, जिसको कुरान में वह मिसलहुम माअहुम फरमाया है। सालिबी ने कहा कि ये कौल जाहिर आयत कुरान के साथ अकरब है। ठीक है, यानी इब्ने मसूद अतान का कौल है, कुतुबी ने उसको नकल किया है और जाहिर कुरान के साथ ज्यादा करीब भी यही वाला कौल है, तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने मरे हुए लोगों को जिंदा फरमा दिया। तो ऐसे कुछ वाकया जो है ना वो नबियों के दौर के अंदर हुए हैं, मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर देना, है ना। جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، وہ جو گدھے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو گدھا بھی مر گیا، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کوہ طور کے اوپر گئے تھے 40، وہ بھی مر گئے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا. تو ایسے چند چیدہ چیدہ ایسے واقعات ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پھر اس کے بعد یہ معاملہ اب اس کے بعد ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی دعا مانگنے سے اللہ مرے ہوئے کو زندہ کر دے، اب اللہ تعالیٰ مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر رہے تو کہنا شروع ہو جائے کہ اللہ تو میری دعائیں نہیں مانگ نہیں قبول کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کر بھی سکتے ہیں ایسا کہ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ. ایسا اب بالکل بھی اس دروازے کو گویا کیا بند سمجھے. بعض حضرات نے فرمایا کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی، اور ان کے مثل اولاد سے مراد اولاد کی اولاد ہے، واللہ اعلم. یہ بھی ایک قول ہے. بہرحال ٹائم ہماری کلاس کو مکمل ہو چکا ہے، یہاں پہ ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.